نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعلم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفاتحة مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم اما بعد Elhamdülillah. Ramzan-ı Mübarek. Allah-u Teala ne? Hemari eslaha ke liye kazim mahina hem ata farmaya. Or fayda uthane valo ne elhamdülillah. Iska pura fayda uthaya. ایمان کے بعد جن جن چیزوں کا تقاضا تھا جو ہم سال بھر میں اس میں سستیاں کر جاتے ہیں بھول جاتے ہیں یہ ہمارے پر توجہ نہیں فرماتے جن عمال پر اس رمضان کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یاد کرا دیتے ہیں موت سے پہلے ثم ترتم الى ملائکیکم الى عالم الغیب والشہادت بما کنتم تعملون. ظاہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ موت سے جتنا ہی بچنا چاہو تم بچ نہیں سکو گے, وہ تو آنی آنی ہے, کوئی انسان نہیں بچ سکتا جانے سے, یہ تو ایک حقیقت ہے. اور پھر اس کے بعد جانا کا ہے سمت ردن علی ملاقی کو, کس سے ملاقات ہوگی, موت کے بعد انسان کہاں جاتا ہے, ہمارے ایمان ہمیں کیا بتاتا ہے, ہمارا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کیا ہوگا, کہاں پہنچے گا, اس کا اینڈ کہاں ہوگا, وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, وہ کون ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بتاؤ ان کو الا عالم الغیب والشہادت, ہر چیز کو جانتا ہے رب ہے تمہارا جو ہر چیز کو جانتا ہے, اس کو کسی شہادت کی ضرورت نہیں, کسی گواہی کی ضرورت نہیں, کسی کی ایسی چیز کو بتائے کس نے عمل نہیں کیا اس کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے کہ جو تم بھول چکے ہوگے وہ بھی تمہارے سامنے پیش کر دے گا, کوئی عمل بھی جو ہوگا پوشیدہ نہیں رہ سکے گا. میں کم تم تعمل ہوں, ہر عمل سے واقف ہے جو تم نے جیسے بھی کیا ہوگا جس طرح بھی کیا ہوگا سب واقف ہی نہیں بلکہ ملاقات پہ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اسی آیت کے اصل میں تیاری ہے رمضان کے اندر کہ ہمارے اعمال جو اللہ کے حضور پیش ہوں گے, پچھلی غلطیاں ہم سے ہو گئیں سال بھر اس کا موقع دیا, معافی مانگ لو اور ایک نئی زندگی شروع کرو, نئی زندگی کی طرف آ جاؤ, بڑا آسان طریقہ ہے, کوئی مشکل نہیں. یہ ہمیں احساس کر رہا ہے رمضان بھوکا رکھنے کی, تھوڑے اللہ پاک نے دیا کہ بھوکے رہے اور کھاؤ پیو نہ, اس طرح عبادت دی اللہ پاک نے کہ میں اسی سے مطمئن نہ ہو جائے آدمی بلکہ اکثر مقصد کو پہچان جائے. لعلکم تتقون اللہ نے فرمایا, کوئی غلطی ہو گئی سال میں ہم سے ہوئی ہیں, انسان ہے, جھوٹ بھی بولا, غلط بھی کام کیے, ایسے عبادات بھی ہم نے چھوڑی, سستی بھی ہم نے کی, اور انسان ہے غلطی ہوگی, ٹھیک ہے اللہ کہتا ہے میں تسلیم کرتا ہوں, میں جانتا ہوں تمہاری باتوں, چلو تم اتنا تو یقین ہے تم میرے پاس آؤ گے, ایمان رکھتے ہو تم اس چیز کا, یہ تو وجیت ہے نا. دیا موقع اللہ پاک نے ہمیں الحمدللہ, فائدہ اٹھانے والوں نے فائدہ اٹھایا, پہلے رمضان سے اپنا تجزیہ کیا, اپنا مشاہدہ کیا, اور اللہ کی اس رحمت اور فضل پر جو انعامات اللہ نے دیے उसकी कदर की और इस हकीकत की पहचाना कि मौत जो है उसको कोई रोक नहीं सकेगा, ज़रूर ज़रूर हमें जाने और हमें गायब हो जाने इस दुनिया से, बिल्कुल गायब हो जाएगा इंसान, पता ही नहीं चलेगा। इतना पता है कि हम उसको नला दिला के कब्र में तो डाल देंगे, उसके बाद कुछ पता नहीं कहाँ चला गया। मैं भी हूँ और आप भी हैं, किसी वक्त ही हो सकता है वो, अल्लाह ताला शायद में यही कह रहे हैं, जाने के बाद फिर आएगा मेरे पास। तो बेहतरीन मौका दिया अल्लाह पाक ने सोचने का, बहुत अच्छा मौका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम समझे, भागे, कोशिशें की, अमालों को समेटा, अपनी गलतियों को समझा और मांगी, माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से। अल्लाह ने माफ़ कर दिया, बिल्कुल माफ़ कर दिया, इसमें कोई ऐसी बनी नहीं है। अल्लाह पाक कहता है बिल्कुल माफ़ किया मैंने तुम्हें, तस्लीम कर लिया अपने रब के सामने कि जी बस साल भर तो बड़ी गलती हुई है, तो अब हमसे गलती हो गई है। तो रमज़ान के बाद जो हमारी ज़िंदगी जो है, पता नहीं कितने महीनों की है, साल की है, दिनों की है, हादसात में मरना है, डूब के मरना है, जल के मरना है, रोड पर मरना है, समुद्र में मरना है, इधर मरना है, इंडिया मरना है, बांग्लादेश मरना है, पाकिस्तान मरना है, कोई किसान को पता नहीं, वो तो है ही है। चलते चलते मरना है, किस तरह मरना है, जाना है, तरीका नहीं पता हमें किस वक्त और कब और कहाँ। तो हमने बड़ा अच्छा मौका है, हमें तो रब तुमने दिया, तो हम जाया नहीं करते। तो पहली चीज़ ये कि सच्चे दिल से आदमी तौबा कर ले भाई तौबा, इसके बगैर तो रमज़ान चलेगा नहीं, बता दो रमज़ान तो है ही नहीं। रमज़ान ये तो हमने फिर डाइटिंग कर ली और कुछ नहीं, रमज़ान नहीं हुए तो खाने के टाइम बदल गया, कुछ वजन शजन कम हो गया, चलो भाई खुश हो गया ठीक है। असल तो है रमज़ान दाखिल जब होगा बंदा, पहले पिछले की माफ़ी मांगे कि अल्लाह ताला बहुत गलती हुई है इसलिए हमने आपने महीना दिए, हम माफ़ी मांगते हैं, हाथ उठा दें बस अपने रब के सामने, ठीक है ये भी कर लिया अल्लाह का फजल से, नमाज भी पढ़ ली, नमाजों की तौबा की भाई, गुनाहों की तौबा की हमने, जो फ़राइज हमारे ख़त्म हुए उसकी तौबा की, ज़कात हमें जो नहीं दी पिछले उनकी तौबाएँ की हमने, और बहुत से मामलातों की तौबा की, रोए अल्लाह के आगे और अल्लाह ने फजल ये फरमाया कि नफ्स को कमज़ोर कर दिया और शैतान को बंद कर दिया, बहुत ही नज़दीक कर लिया अपने, हमें बहुत ही नज़दीक इसके साथ हमें कर लिया, तो हमने किया। जिन्होंने नहीं किया, उम्मीद तो सब ने किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी भी वक्त बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, भी पढ़े हैं दिन और अभी तो बहुत ज़बरदस्त वक्त आने वाला है, बहुत जो रातें आने वाली हैं ये तो बस पूछे ही ना, ये तो समझो कि जन्नत के ख़जानों में घूमेंगे हम अल्लाह के फजल से। लूट मार मचने वाली है अभी, इसको मैं कहता हूँ लूट मार, सेल अक्सर हमारे जब ये शुरू होता है रमज़ान तो लोग कहते हैं सेल शुरू हो गई, अक्सर लोग इस बात की तरफ से आते हैं ना सेल, तो सेल का आखिरी टाइम क्या होता है फिर, मगर चलो चलो कोई जो भी मिल जाओ, रश होता है खूब पटम पटम चलता है, रश होता है ना इस वक्त, तो इस वक्त ये रश है, इस वक्त बड़ा रश लगेगा, अभी बहुत रश लगेगा, लूट मार मचेगी अभी। तो भाई उसके लिए है कि इस लूट मार के लिए हमें तैयार होना चाहिए सबसे पहले, तक अंदर जाने दाखिला तो हो, दाखिल नहीं होता स्टोर में दाखिल कैसे होंगे, रमज़ान में दाखिल कैसे होंगे, उसका जो दाखिले की जो टिकट है वो क्या है, जोर से बोलना क्या चीज़ है, तौबा। तो भूल गए करने से तो कोई बात नहीं, अभी याद आ जाए तो अभी कर लें तौबा, तो कम से कम दाखला तो मिल जाएगा, बेशक बीच में मिले कहीं से मिले। याद रखने की बात बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई तकरीर वकीर नहीं कर रहा है, तो मैं एक दिल में मेरी एक अजीब बात आई वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सच्ची तौबा, डरे बगैर तौबा, जो किए पिछले माफ़ी, हम सोचने नहीं चाहते, और जिन गुनाहों को जो कर चुके माफ़ी, आइंदा उन्हीं गुनाह से इज्तनाब हम नहीं करेंगे, बस डरे नहीं हो जाएंगे, इसके नहीं डरते, इस चीज़ से नहीं डरते हैं, ये कोई डरने वाली बात है, क्या कहना है, नहीं हमने नहीं करना, बस खत्म, पक्का इरादा, पक्का इरादा नहीं करना, करो खत्म, कर लिया उसकी माफ़ी, जो किया था गुना गलत आंदा उसको नहीं करना, पक्के बस इतनी ये माहिदा है, अलम माहिदा हुआ, ठीक है तूने ये दो बातें की, मैंने तेरे सारे माफ़ किए और तुझे बख्शा, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्सा है, वो तो रब है कादिर है, जिसने पहले तारुफ़ ना करा दिया, आलम गैब वो हर चीज़ को जानता है, तुम्हारे हर राम बेगुन तुम तावन हो, हर रामन को जानता है, मुझे लिस्ट की जरूरत नहीं है ना, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है कि तूने ये गुना किए वाला गुना किए, लिया गुना जो आसमान तक तेरे गुना बढ़ जाए, आसमान तक चले जाए तेरे गुना, जिसमें जना भी हो जो कुछ भी हो आसमान तक ले जा, एक दफा कह दे माफ तो मैं कह दूंगा माफ, मुझे कौन पूछने वाला है, मैं रब हूं, मैं कादर हूं, मुझे पूछे, इससे ये है हमारा रब अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे लाए हम ईमान, जिसको मानते हैं अपना रब, ये है अल्लाह, अल्लाह जिसको हम याद करते हैं, हर वक्त याद करना चाहिए, इतनी ताकत है उसकी, कोई दुनिया की ताकत उसके फैसले पे नहीं आ सकती। फरिश्ते लिस्ट लाए, ये जी देखें ये तो इसने ये किया, वो पीछे हटो, तुम लिस्टें क्या दिखाते हो, मेरा हुक्म है इसने मुझसे माफी मांगी है, उन जगहों को बुला दो जहां पे इसने गुनाह किया था। फरिश्तों कहे ये जो तुमने लिस्ट बनाई इसको जलाओ, और जिस जिस जगह पर इससे गुनाह हो गया था, जिस तख्त के पास से गुजरते इसने कोई ऐसी बात कर दी थी, जिस जमीन पे इसने गुनाह कर दिया था, उसको बुलाओ, जमीन को कह दो खत्म करो, इसके तमाम चीजों को जला दो मिटा दो, ये मेरा महबूब बन चुका है, इसने मुझसे माफी मांगी, ये मेरा बंदा है, मैंने इसको पैदा किया है, मैंने इसमें जरूर डाली है, मैं इस पर फख्र किया था फरिश्तों के सामने, बस मैं तो मुंतजर था इसका, हाय हाय क्या शान अल्लाह, क्योंकि मैं तो इंतजार कर रहा था इसका, क्या आ जाता है आ जाता है आ जाता है, बस ये तो एक राह भूल गया था, तुम किस चक्कर में अपनी फाइलों को पकड़े फिरते हो इसके पीछे, ये गुनाह ये फला गुनाह तो ये छोड़ो फाइलों को, मैं तो इंतजार में था कि शायद इसी रमजान में आ जाए मेरे पास, और यही ना समझे कि भाई सुबह सहरी खानी है, शाम को इफ्तारी करनी है, और असल मकसद को भूल जाए, तो मैं तो इसी इंतजार में था कि बंदा बस आ जाए मेरे पास, एक दफा कह दे रब मैं आ गया तेरे पास, तेरा बंदा आ गया, माफ कर, बस यही मैं इसे कहलवाना चाहता था, मामले खत्म, कितना आसान है, करते हैं भाई तौबा, पक्की तौबा, अल्लाह गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, तो रमजान में दाखिल हो गए, लूट मारना मची है, तो अब वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अमाल तो हमने किए, एक बहुत अमल जो इस वक्त मेरे जहन में आपके सामने पेश करूँगा अपने आप को बचाने के लिए, और आपको भी कि इसमें महरूम हो सकते हैं, फिर हम अब हम क्या कहें, नमाजों भी हमने जोर दिया पढ़ा, कुरान की तलावतें की, इसमें कोई शक नहीं, जिक्र अस्कार किया, और तबलीग में चले गए, तबलीग दावत की, सब कुछ हमने किया माशाल्लाह, अमल घसीटे बस लिया, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, इसमें एक ऐसा भी अमल है जिसके साथ इशारा किया था अल्लाह इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत कम दखल दिया हुआ हमने उसका, उसकी अहमियत हमारे नज़दीक नहीं है, तभी हम जलील हैं आज, हम ख्वार जो जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में उस अमल को फरामोश करने की वजह से, तो अगर कहीं इस रमज़ान में हमें फरामोश कर दिया तो उसकी सज़ा इतनी बड़ी है, सुन लें, उस इबादत को छोड़ने की सज़ा इतनी बड़ी है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, रोज़ा रखे, नमाजें पढ़ें, कुरान की तलावतें की, सजूद किए, तरावी पढ़ें, सब कुछ हमने किया, और फिर अल्लाह ने हमें शब कदर पे पहुंचाया, हम बड़े खुशकिस्मत समझ रहे हैं आप, है ना, सब कुछ लूट लिया हमने, और बड़े तरीके से हम शब कदर तक भी अल्लाह के फजल से पहुंच गए, और वो रात भी पहुंच गई कि जब बत्ती बंद हुई और हमारे इमाम साहब ने कुरान को ख़त्म किया, और उसके बाद सारा मजमा बैठा है हज़ारों का, उस मजमे के अंदर फिर दुआएँ चलें और गिरिया चला, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले, और फरिश्तों की लाइनें लगीं, और बहिश्तों के अंदर जनाब लाइन लगी बख्शिश की, ज़िंदगी इंसान की बदली जा रही है, उस वक्त भी कि ऐसा ना हो कि ऐलान होगा कि मैंने इस शख्स को नहीं बख्शा, ये सोच लें, ऐलान होगा, बख्शा बख्शा बख्शा, इसको नहीं बख्शा, इसको नहीं बख्शूंगा, वो कहीं मैं और आप ना हो, शायद वो इबादत हम मिस कर गए, याद रखें वो इबादत मिस कर गए, याद रखो आज 23 आज है ना हमारा शब कदर है ना दूसरी माशाल्लाह, हाँ तो मेरा ख्याल इसी बात को भी हम जरा सोच लें, वो कौन सी इबादत थी, एक शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू याला शख्स आया और कहने लगा कि आप ही हैं जिन्होंने दावा किया है कि अल्लाह के नबी हैं, देखिए क्या अंदाज है, होगा गैर मुस्लिम के तमाम सहाबा बैठे हैं, अभी देखा उसके तो साहो ने देखा भैया सरकारी इसमें जवाब दे शत फरमाया कि हाँ मैं ही हूँ अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, मैं हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा तो ज़रा यही बताएं अगर आप नबी हैं अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है, अल्लाह को पसंदीदा अमल अल्लाह पर ईमान लाना सबसे बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मौजूद है हमारे पास, ये तो पैदाइशी हमारे कानों में पढ़ चुके थे ईमान ले आए थे, कुछ तो मेहनतों के बाद बेचारे लाए हैं, हम तो माशाल्लाह पैदाइशी ईमान वाले हैं अल्लाह के फजल से, ये तो मौजूद है। अजी दूसरा अमल क्या है पसंदीदा अमल अल्लाह का पूछा उसने, कहता दूसरा अमल जो है जिसमें आप हम गौर करेंगे सुलह रहमी है। सुलह रहमी समझते हैं, ये अखलाक का सबसे इस्लाम की रूह है, ये ईमान की इस्लाम की रूह है, अच्छा अखलाक सुलह रहमी, लड़ने वाले को माफ़ कर देना, रिश्तेदार रूठे हों तो मना लेना, पड़ोसियों का ख्याल रखना, किसी से लड़ाई न रखना, किसी से झगड़ा न करना, किसी से दुश्मनी न रखना, दिल में किना न रखना, दिल में बोगस न रखना, ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को बहुत संवार कर रखना, तरीके से रखना, सबसे बातें करना। और सुलह रहमी तो हकीकत में ये है, ये नहीं कि भाई कोई आपसे मिलना नहीं चाहता आप उससे नहीं मिलते, बल्कि ये है कि वो आपसे मिलना ना चाहते हो लेकिन आपने उससे मिलना है। मेरे अजीज ये वो इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि तस्बीह करना आसान है, जिक्र करना आसान है, सारी रात नवाफिल पढ़ना आसान है, तलावतें करना आसान है, सजूद करना आसान है, रोज़े रखने आसान है, तवाफ़ कावा करना आसान है, मैं सही बता रहा हूँ सही करना आसान है, लेकिन ये इतनी बड़ी इबादत है कि किसी आदमी के सामने हाथ जोड़ के आदमी माफ़ी मांगे कि मुझे माफ़ कर दे, इसकी चुर जो कर गया अल्हम्दुलिल्लाह वो इस रमज़ान को पा गया, क्योंकि अल्लाह नबी ने ऐलान फरमाया है कि सबको बख्श दूंगा उस रात में जिसमें सबको बख्शना है मैंने जो मुझसे माफ़ी मांगेगा, लेकिन उसको नहीं बख्शूंगा जिसने सुलह रहमी नहीं की होगी, जिसके दिल में कतअ रहमी होगी, जिसके दिल के अंदर अखलाक नहीं होगा, ये इबादत है। और कितनी अहम है आप ये सोचें कितनी अहम है ये कि आखिरी दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं मस्जिद पर, आखिरी दिनों में इंतकाल से इस दुनिया से जाने से चंद दिन पहले मेंबर पर तशरीफ रखते हैं, कोई वाज नहीं कुछ नहीं, अहमियत बताई इस इबादत की, जैसी नमाज की बताई सब की बताई, इस इबादत की देखें कितनी बड़ी अहमियत बताई है अल्लाह के नहीं सुनने, बैठ के मेंबर पर पता है आज क्या इरशाद फरमाते हैं, दीन का कौन सा जुज है जो निकलता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुंतजिर हैं तमाम सहाबा कि लब हिलें और हम कुछ और मोती चुने दीन के लिए एक इजाफा हो, हलालत में है आप सब, क्या फरमाया अल्लाह फरमाते हैं कि वे देखो मफहूम बता रहा हूँ हदीस का, आखिरी वक्त है जब पता अल्लाह के साथ मुलाकात हो जाए, मैंने अगर किसी के साथ ज्यादती की है, किसी का उधार देना है, किसी को तकलीफ दी है, मैं मोहम्मद इस वक्त मौजूद हूँ, मुझसे जो बदला लेना चाहते हो तो बदला ले ले, मैं अगर ना दे सका उस वक्त ना होगा तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, कितनी बड़ी इबादत है मुझे बताएं आप, एक नबी की है इबादत नहीं अंदाज़ा लगे, और ये कुछ ऐसा नहीं था कहा गया प्रैक्टिकल करके दिखाई, खड़ा हो गया साहब क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, या सुन आपने फला वक्त मुझसे इतने पैसे लिए थे फला दिए थे, कहता ठीक है मुझे तो याद नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तू गलत कह रहा है, मुझे तो पक्का भरोसा है, खालिबा हजरत बास थिया अहल बैत में कुछ दफा मैं इनको ये पैसे दे दो, एक और खड़ा हो गया तो या सुन आपने मेरे कमर पर एक कोड़ा मारा था या कोई हाथ लग गया था या कोई छड़ी लग गई थी तो मुझे बदला चाहिए, तो हाँ ना क्या दीन सिखा है ये इस्लाम है, अरे भाइयो इस्लाम है, आज पड़ोस में लड़ाई हुई है हमारे रमज़ान की खुजू ने खा रहे हैं, रिश्तेदारों से गाली हुई हैं, फलां से दुश्मनी है, बहन घर में नहीं आ सकती, दूसरी बहन उसके घर में नहीं आ सकती, उसका झगड़ा उसके साथ है वो उससे नहीं मिल सकता, وہ اس سے نہیں ملتا. کہہ رہے ہیں رمضان ہم وہاں گزار رہے ہیں مدینہ منورہ والے میں اور مکہ مکرمہ میں. سبحان اللہ, ذرا اندازہ لگائیں یا رمضان سمجھے ہی نہیں. ادھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ جس کی عبادت نہیں ہے وہ بخشے نہیں جائے گا, بے شک کہیں چلا جائے. بڑی خوبصورت راتیں آنے والی ہیں, اس سستی سے نکلیں. اور معافی مانگنا جو ہے سب سے بڑی عبادت ہے, میرے سرکار کی سب سے بڑی سنت ہے. انسان نیچے نہیں ہوتا بلکہ بلند ہوتا ہے, اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے جس کے ساتھ آپ نے. اور حقیقی جاتے بھی اگر حقیقت بھی آپ کا قصور نہیں ہے, قصور وہ دوسرا ہے, اس وقت ہی تقویٰ خوف اللہ کی رضا یہ کہتا ہے کہ تو ہی معافی مانگ لے یار, کیا فرق پڑتا ہے اس میں. اور یہ کتنا بلند مقام ہے مجھے آپ بتائیں کہ اللہ کے ایک نبی اپنی امت سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے معاف کرو. اللہ ہو تو ایک میری اور آپ کی کیا ضرورت ہے کہ میں کسی سے کہہ دوں گا یار تم مجھے معاف کر دے. لیکن انا اور تکبر کا یہ معاملہ ہے ہمارا کہ سر بھی جھک رہے ہیں, تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں, تسبیحات بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن تکبر کا یہ حال ہے کہ ہم اس سے نہیں کہیں گے کہ ہم تجھے معاف کر دیں. مجھے بتاؤ معافی مانگنے والا بلند ہے جی؟ معاف کر دے جس سے معافی کی جی جا رہی ہے وہ بلند ہے. بلند آپ ہی ہوں گے اللہ کی فضل سے. اگر یہ آج ہم نے عبادت نہیں کی رمضان کے چند دنوں میں, میرے دوستو ہم رمضان کو ضائع کر دیں. اور اس عبادت کے لیے اللہ نے دیکھیں اسی رمضان نے کیا سکھایا ہمیں, رسول اللہ رحمی کیا سکھایا ہے, آپ خود سوچیں. اللہ کے نبی نے کیا بتایا اس کا اجر, اس کا اجر جو بتایا ہے عجیب ہے, عجیب و غریب انداز سے بتایا ہے رسول اللہ رحمی کا اجر. کہتا ہے بھائی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کا روزہ کھلوا دیتا ہے, اب دے یہ بالکل چھوٹی سی سب بات ہے, کسی مسلمان بھائی کا روزہ کھلوا دیتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ ہو اس کا اجر یہ ہے کہ اس کو دوزخ سے بری کر دیا جاتا ہے, بخشا جاتا ہے. کسی سجدے کی ضرورت نہیں, کسی مصلی کی ضرورت نہیں, کسی وضو کی ضرورت نہیں, کسی مسجد کی ضرورت نہیں. یہ دل ہے جہاں یہ سب کچھ وہیں مل جائے گا آپ کو. یہ سب دل کے اندر ہی یہ مسجد ہے, دل میں ہی سجدے ہیں, دل میں ہی وضو ہے, سب کچھ اس کی عبادت کا جو ہے سب دل میں ہے. دل کو جھکا لیا آپ نے اور کہہ دی ایک مسلمان بھائی کو چھپ یہ گا. یہ بھی نہیں کیا آپ ان کے لیے تناول کے لیے کھانے پیش کریں, مرغے پیش کریں, چکن پیش کریں, کباب پیش کریں, اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے. ہم تو عبادت چاہتے ہیں, یہ مقصد یہ چیزیں کا نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ دل تیرا کدھر ہے, دل تسلیم کر گیا اس بات کو کہ میں اپنے بھائی کی قدر کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, اس سے میں تعلق رکھنا چاہتا ہوں, اس کے میں اس کی دل میں ہمدردی ہے. اصل چیز تو یہ ہے, یہ نہیں کہ لوازمات کو چاہیے. اس کی مثال دے دی اللہ کے نبی نے کہ میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا بلکہ یہ کہ بھائی تم بہت کھانے پیش کو مت بتانا, دل جھکا تیرے نہیں جھکا اور تو ایک کھجور بھی دے دے گا, پانی کے ایک گھونٹ بھی پلا دے گا, ثواب وہی ملے گا کہ تیری بخشش ہو جائے. مقصود یہ ہے کہ دل کو جھکو, دل کو جھکو اللہ کے لیے. کتنی بڑی عبادت ہے دوستو, سبحان اللہ. اس میں دنیا اور آخرت ملتی ہے. ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک نے اعلان فرمایا, ارشاد فرمایا اس بات پر کہ دیکھو دو ہی چیزیں ہیں, اللہ سے بات کون جاتا ہے انسانوں کو, کس کو اس شوق نہیں اس کا مال بھی زیادہ ہو, اس کا رزق بھی زیادہ ہو. یہ دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس, اس پہ ہم لوگ ساری زندگی کی کوشش کرتے ہیں. کرتے ہیں نا بھائی, ایک انسان کی عادت ہے, فطرت اللہ نے پیدا کیا, مال کو بڑھانا چاہتا ہے, رزق کو بڑھانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں اس چیز کو. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ عمر بھی میری بڑھے, عمر میری بڑھے, ظاہر ہے عمر بڑھانے کی خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کی جو عمر ہے نا اس میں ایک چیز ختم ہو جاتی ہے, انسان کے جو جسم کے اجزاء ہیں وہ تو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جو خواہشات ہیں ویسی جوان رہتی ہیں. 80 سال کے آدمی سے کہیں گے بڑا اچھا رشتہ آ رہا ہے آپ شادی کر لیں تو ادھر ادھر دیکھے گا, ہاں ضرورت تو ہے کوئی خدمت کرنے والی مل جائے, کیوں خواہشات جوان ہیں انسان کی, اجزاء جواب دے چکے ہیں. ذرا آپ اور گردن جھکا کے دیکھیں نا, ابھی آپ کسی ہمارے رشتہ آ جائیں جی بہت بہت خوبصورت لڑکی ہے اور یہ ہے فلاں ہے جناب, کوئی اس کو جہیز بھی چاہیے تو آپ ہاں ضرورت تو ہے یا ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں. یہ کیا چیز ہیں؟ خواہشات ہیں انسان کی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں اس کیپیبل ہوں, اس کے قابل ہوں, کیا میں اس کو نبھا سکوں گا. جیسے ہم دو شادیاں بڑی جلدی کرتے ہیں نا, دو شادیوں کو آسان نہیں ہے اسلام کے اندر کرنا, سب سے مشکل کام ہے فرمایا. اور دو بیویوں کے اندر انسان, دو بیویوں کے درمیان اگر انسان انصاف نہ کر سکا, حضرت حکیم محمد نے दो शादी कर ली थी तो हर वक्त तराजू लेके बैठते थे कि ये तेरा ये तेरा, या तो इतना तकवा होना चाहिए दो शादी करना, ये मामूली बात नहीं है, या तो इतना तकवा हो इंसान के पास कि इंसाफ का ये मामला हो कि दोनों का अंदर से दिल से लेकर राजी करना, बाहर तक मादियत तक उसके बराबर का इंसाफ किया जा रहा है। अगर जो ये नहीं कर सकेगा तो रोजे क़यामत में वो ऐसा उठेगा कि जैसे कि उसके गोश का कोई जिस्म भी नहीं होगा और हड्डियों का ढांचा बनाकर अल्लाह ताला उठा देंगे उसको। यह है इस्लाम के अंदर, याद रखना हर चीज इंसाफ के साथ चलती है। ये शादी शादी दो शादी तीन शादी ख्वाहिश दो, बीच में जमनी किस्सा आ गया इसको नहीं ड्राफ करता हूँ, ये माहौल बताने का नहीं था। तो ख्वाहिशात इंसान की जवान देती है, ख्वाहिशात इंसान की कभी बूढ़ी नहीं होती, हर तमन्ना उसकी बढ़ती रहती है। तो हमारी तमन्ना है कि माल भी बढ़े, हमारा जनाब रिज़्क भी बढ़े, और इसी तमन्ना के साथ हम डाउन होते जा रहे हैं लेकिन फिर कहते हैं या अल्लाह बढ़ाई दे कुछ उम्र और, पोता देख लूँ, नवासी देख लूँ और उसकी नवासी देख लूँ, बस ख्वाहिशात है ना आदमी की, चलो यार उसकी शादी देख लूँ, उसको दाग दाग देख लूँ, जी आपको 80 हो गए, अरे 80 तो क्या बस से रहा, अल्लाह शुक्र कुछ और बढ़ जाए, ये कोई डॉक्टर है या कोई भाई की दवा दे दे कुछ जरा इलाज हो जाए मेरा कुछ जिसम बढ़ जाए। ये अल्लाह के नबी नहीं जानते हैं नफ्सियात, अल्लाह अल्लाह के रसूल से ज़्यादा कौन जानता है, कहता ये चाहते हो तुम वाली ख्वाहिश पूरी हो जाए, सुभान अल्लाह, और जो उनकी तरफ से ख्वाहिश पूरी होगी तो अगर उम्र बढ़ी भी तो कैसी उम्र होगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत बनाने वाली उम्र होगी, सेहतमंद और तवाफ कराएगी आपको सेहतमंद, और आपको जनाब हज उम्रे कराएगी सेहतमंद। कितने साल के हैं, हमने ऐसे लोग देखे अल्हम्दुलिल्लाह 99 साल के, मैं खुद अपने हजरत को देखा कि वो मुझे संभालते थे रश के अंदर, मैं उनको नहीं संभाल पाता था, इतनी उम्र थी उनकी, मैं कहूँ इतनी उम्र की याद नहीं, 100 हिसाब लगा लें आप, एक मुझे याद है इतना सख्त रश था तो मैं उनको संभालने के लिए गया होता पदम से कि अपने शेख उनको संभालूंगा, हज का जमाना था और आदमी बे आदमी रश, मैं कहा आज हजरत को हाथ हाथ में डंडी झुके हुए ज़ईफ़ इंसान स्वस्थ उम्र, तो मैं आज तो हजरत को बचाना पड़ेगा अभी रश से, तो मैंने हजरत बड़ा गिर कर हाथ पकड़ा, इतना बड़ा तकालों का झोंका है कि मैं हवा में उड़ जाता, हजरत एक हाथ से मुझे संभाल लिया, मैं वहीं खड़ा हो गया कि भाई हकीकत में ना ये मुझे संभाल, ये समझ तो अल्लाह ही संभालता है इंसान को, इन्होंने ताकत दी है। तो ये जो उम्र हैं, और कभी जिंदगी मैंने कभी नहीं देखा कि या कोई हजर को मरा मिस हुआ हो, और हमसे ज़्यादा इबादत के साथ, यानी सुबह अगर जाना सुबह जाना तहज्जुद पे तो रात को किस वक्त निकलना, जब सारा हरम खाली हो जाता 11-12 बजे उस वक्त निकलते थे हरम से, और सिर्फ 2 घंटे के लिए 3 जाते थे वजू के लिए, ना खाना ना पीना, ये ताकत कहाँ से आ गई, ये दुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर कोई चाहता है उसका माल बढ़ जाए, अगर जो सरकार हम नुस्खा बता रहे हैं वो माल ऐसा बढ़ेगा कि तंग करने वाला नहीं होगा, उस माल से हमारी औलाद नाफरमान नहीं होगी, बल्कि वो ऐसा माल होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें जन्नत में पहुँचाएगा, सदकात देंगे ज़कात देंगे और ज़िंदगी को बेहतरीन अयाशी गुजारेंगे, मर्सिडीज़ रखेंगे, महलात बनाएंगे, वो हैरान भी करेंगे और सुकून भी अल्लाह ताला उसमें देगा, क्योंकि दुआ किसकी है पीछे, मेरे आका की है, मेरी बातें समझ नहीं, इसमें मेरे आका की दुआ है। तो ये इसको भाई तुम माल बढ़ाना चाहते हो, जिसे बढ़ाना चाहते हो, उम्र बढ़ाना चाहते हो, हम कहेंगे ज़रूर चाहते हैं, सब कहेंगे चाहेंगे, चाहते हैं चाहते हैं, इसके से जो मैं आपको इशारा दिए हैं कि ऐसे माल ऐसी ऐसा रिस्क हम तो चाहता हैं, मैं तो चाहता हूँ भाई अल्लाह के फजल से, मुझे तो चाहिए ऐसी उम्र भी चाहिए कि खूब तवाफ़ हों, खूब तलावतें हों, खूब जिक्र अल्लाह हो, खूब तबलीग और दावत का काम हो, हम तो चाहते हैं ज़िंदगी इसमें गुजरे, और ज़िंदगी देते हमें क्या नुकसान है, ठीक है ना भाई, उसमें कोई बीमार भी ना हो, सेहती सेहत हो, ना डॉक्टर के पास ना इंजेक्शन ना टेस्ट कुछ भी ना हो, हमें तो मुझे तो चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़िंदगी, जन्नत तो मिलनी ही मिलनी है अल्लाह के वसीले से, तो कुछ और कमा लें। तो अल्लाह के हबीब की दुआ जो है हमें बताएगी, वो फेल हम कर लें, वो क्या फरमाया कि अगर कोई चाहता है, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उसकी उम्र बढ़ जाए, उसका रिज़्क बढ़ जाए, उसका माल बढ़ जाए, तो क्या करे, सुलह रहमी करे, पड़ोसियों के साथ दोस्ती करे, दोस्त अहबाब के साथ मोहब्बत से मिले, किसी के दिल ना दुखाए, किसी को गाली ना दे, किसी को बुरा ना देखे, इस इबादत के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा जाए, खास इस्लाम जो इबादत बताई तो खास चीज़ का ख्याल रखा जाए, इसमें ये तशखीश नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये यहूदी है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये सिख है, नहीं, यहाँ वहाँ ये देखना है कि अल्लाह का बंदा है, ये भूखा है, उससे ताल्लुक नहीं पूछना करते, ताल्लुक किसके साथ है उसको पूछना, ये नहीं देख रहे, हम समझते कि मैं भी आदम के औलाद में से हूँ, ये भी आदम के, ये भटका हुआ है जरा और मुझे राह मिल चुका है, तो ये ज्यादा हमदर्दी का मुस्तहिक है, इसको ज्यादा मेरी मदद चाहिए, इसको ज्यादा मेरा प्यार चाहिए। दुश्मनी नहीं सिखाता इस्लाम, इसको तो ज्यादा मुझे प्यार करना चाहिए। तो क्योंकि एक चलते एक बाप से रहे, हम कहां से आए, हव्वा की और आदमी की औलादी हम सब हैं, ये भटक चुका है और मैं राह पे आ चुका हूं, तो मुझे चाहिए जो मेरा भाई भटक चुका है उसको रास्ते पे लेकर आऊं। तो उसको तो ज्यादा हमदर्दी की जरूरत है, और वो किसी परेशानी के हाल में है, किसी मुसीबत में, किसी मुश्किल में है, तो बिल्कुल आइन उसी तरह उसकी मदद की जाएगी, उसको पैसे दिए जाएंगे, जहां तक इस्लाम और शरीयत हमें इजाजत देता है उसके साथ ताल्लुक को बहाल किया जाएगा, मोहब्बत की जाएगा, हमसा है तो उसके साथ वैसे ही हकूक किया जाएगा। मैं खाना खा रहा हूं, भूखा है तो मैं उसको खाना दूंगा, उसके पास कोई चीज नहीं है, वो बीमार है, मैं उसके साथ अपनी गाड़ी बिठा के हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। मुझे नहीं देखना कि उसका उसका रब चर्च के अंदर है या गिरजे के अंदर है या बुतखंदे में है, नहीं, हमें से कोई ताल्लुक नहीं। हमें पता है कि इंसान है, अल्लाह के पैदा किया इंसान है, हमें पूरी हमदर्दी उसकी करना होगी। यहाँ ये तख्सीस खत्म हो जाती है, क्लासिफिकेशन खत्म हो जाती है। ये इबादत बहुत वसी है, जो ये इबादत कर गया अल्हम्दुलिल्लाह वो रमजान को पा गया, हम भूले थे इस इबादत को, ये बहुत जरूरी है। आज हमें ये काम करना है, जो हमसे रूठे हैं उनको हमने मनाना है, हाथ बांध के माफी मांगनी है, उनके दिलों को खुश करना है, दिलों को जोड़ना है। अल्लाह को दिल तोड़ने वाला नहीं, दिल जोड़ने वाला बहुत पसंद है। अल्लाह ताला हमें इस इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि ये भूल गए तो हमारी शब कदर खत्म हो जाएंगी। वाकदान अलहमदिल्ला रबीआलमीन।